اذا اتوا علی واد النمل، ایک مرتبہ وہ اپنی اس پورے لشکروں کے ساتھ یعنی جس میں یہ سارے لوگ شامل تھے تو وہ پہنچے چیونٹیوں کی ایک وادی پر۔ قالت نملتن، تو ایک چیونٹی بولی، یا ایوہ النملو، اے چیونٹیو، ادخلو مساکنکم، کہ تم لوگ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یاتی منکم، کہیں تمہیں کچل نہ دے، چورا چورا نہ کر دے، روند نہ دے تم کو، سلیمان و جنودہ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکروں کے ساتھ جو ہیں ایک چونٹیوں کی وادی پر پہنچے تو ان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھ کر ایک چونٹی بولی، قالت نملتن، یہ کون تھی؟ یہ چونٹیوں کی ملکہ تھی، نملتن، یہ چونٹیوں کی ملکہ تھی، تو وہ بولی۔ اس کے معنی کیا ہے کہ جانور جو ہے، یہ حیوانات جو ہیں، یہ بھی شعور رکھتے ہیں اور یہ بولتے ہیں۔ جیسے اب تو ریسرچ سے، یہ سائنس کی ریسرچ سے یہ بات بھی جو ہے وہ ثابت ہو گئی کہ چونٹیاں بولتی ہیں، اور کبھی آپ بھی چونٹیوں کو آتے جاتے دیکھیں نا، ان کے اوپر سامان لدا ہوا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو کر ایسے لگ رہا ہوتا ہے یا تو گلے مل رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، اور راستے میں جیسے کوئی میسج دے رہی ہیں، تو محسوس ہوتا ہے ایسے۔ آپ کبھی غور کیا کریں، ضرور مشاہدہ کیا کریں۔ تو اب نمبر ایک بات کیا پتا چلتی ہے کہ چونٹیاں بولتی ہیں، تو اس لیے وہ بولی۔ دوسری بات کیا پتا چلتی ہے کہ ملکہ جو ہے اس کو باقی چونٹیوں کی حفاظت کی فکر تھی، تو اس لیے کہنے لگی کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ مساکن جو ہے نا، سکن سے ہے، سکن جیسے کوئی جگہ جہاں پہ کوئی رہتا ہے نا، مکین، کہیں ٹھہرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ ہاں تو آمیم اس کا روٹ ہے، یا تیمنا کم کا، اور اس کا مطلب ہے چورا چورا کرنا اور روندنا۔ الحتامہ، الحتامہ جو ہے یہ جہنم جو ہے اس کا بھی نام ہے نا، وما ادراک ما الحتامہ، النار الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ تو کیونکہ جہنم جو ہے اس میں جب جہنمی ڈالے جائیں گے تو وہ جہنم کے اندر جب گریں گے تو وہ چورا چورا ہو جائیں گے، تو وہ چورا چورا کر دینے والی، روند دینے والے۔ تو اب کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کے ہی تمہیں روند نہ دیں، تمہیں مسل نہ دیں، کچل نہ ڈالیں۔ تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور جو ان کے لشکر تھے، اب ان سے وہ حفاظت کروانا چاہتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہم لا یا شرون سے کیا پتا چلتا ہے کہ چونٹی ہے لیکن اس کو جو ہے اس کے اندر حسن زن پایا جاتا ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ یہ نہیں کہتی کہ انہیں پتا چل جائے گا اور وہ ماریں گے، نہیں، وہ کہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انہیں پتا بھی نہ ہو، انہیں احساس بھی نہ ہو، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے حقیر سے وجود جو ہے ان کے پاؤں کے تلے آ کر جو ہے وہ کچھ لے جائیں۔ تو یہ جو ہے ان کی فوج کا ذکر ہے، اور ایک چونٹی جو کہ ملکہ ہے وہ اپنی باقی ساری چونٹیوں کو جو ہے وہ خبردار کر رہی ہے، ان کو بتا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ چونٹیوں کے اندر بھی حسن ظن پایا جاتا ہے نا، کہ وہم لا یشعرون، کہ ان کو پتا بھی نہ چلے، کیونکہ وہ یہ تاویل دیتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو خبر بھی نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جان بوجھ کر ہمیں کچھ لیں گے یا ماریں گے، بلکہ وہ کہتی ہے کہ انہیں پتا بھی نہ ہو۔ تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اتنی عظمت اور فضیلت کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے تو چونٹیوں کو خطرہ ہوا نا کہ کہیں بے خبری میں ہمیں روند نہ ڈالا جائے۔ تو یہ چونٹیوں کے واقعے سے بھی پھر ہمیں جو ہے وہ کیا بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہمیں ہمارے اندر بھی حسن ظن ہونا چاہیے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی، فتح بسما، اور پھر مسکرائے۔ با سین میم جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ مسکرانا، جسٹ اسمائل، दाहे कनिष के मानी होते हैं लाफ, हंसना, द्वादहा काफ। तो पहला हंसने का पहला दर्जा क्या होता है? बसामा लोग, बिस्मा, बसमा नाम भी रखते हैं, मुस्कुराना, और द्वाहेकन हंसना, लाफ करना। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़े, मिन कौलिहा उसकी बात पर, वकाला और बोले। अब यहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो है वो दुआ का जिक्र किया गया है, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है जब इतना अजीमुशान वाकया इनके सामने हुआ कि इन्होंने कि इनके अजीमुशान लश्कर का उसकी अजमत का चींटियों ने इतराफ किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटियों की ये बात को सुन भी लिया, समझ भी लिया, तो अब इससे मगरूर नहीं हो गए, इससे तकबर में मुब्तिला नहीं हो गए, बल्कि क्या किया, अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। वकाल रब्बे औज़ेनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया वअला वालिदै वअला वालिदैय वअन अमल सालिहन तरदाहु वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिकस सालिहीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के आगे झुक जाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बे औज़ेनी, ऐ मेरे रब मुझे थाम ले, मुझे संभाल ले, मुझे पकड़ ले, मुझे रोक ले। यानी ये जो अजीम शान कुवतें, काबिलियतें, नेमतें, परिंदों की बोलियां, इतना कुछ तूने मुझे अता किया है, कहीं ये मुझे फखर और गरूर में मुब्तिला ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझसे गाफिल हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बंदगी की हद से बाहर निकल आऊं। क्योंकि जब नेमतों की कसरत होती है तो फिर क्या होता है कि इंसान फिरौन बन जाता है, नमरूद बन जाता है, फिर इंसान जो है वो अपने आप को अपनी ख्वाहिशात के सुपुर्द कर देता है। अब देखें सुलेमान अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे कितने हकीकत शनास थे, उन्हें कितनी फिक्र थी कि अल्लाह ताला से जो है वो दुआ करते हैं कि एक तरफ चींटियों की बात सुनकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, फौरन अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, ऐ मेरे रब औज़ेनी, मुझे थाम ले, वौज़ाइन अन अशकुर नेमता का, कि मैं शुक्र अदा करूं तेरी उस नेमत का। नेमत लफ्ज जो है ये इस्म जिन्स है, वाह जमा मुज़क्कर मोनस इस्तेमाल होता है, अल्लाती अन अमता अलैहा, वो नेमत जो तूने मुझ पर की है, वाला वालिदैया, और मेरे वालदेन पर की है। यहां पर जो है ये बात बहुत अहम है कि उन्हें सिर्फ अपनी ही नेमतों पर शुक्रगुजारी की फिक्र नहीं थी, बल्कि उन्हें ये फिक्र थी कि मेरे वालदेन पर जो तूने नेमत की है मैं उसका भी शुक्र अदा करूं। अब आप जरा गौर तो करें, इसको कहते हैं वालदेन के हुकूक अदा करना, यानी उनकी खिदमत करने के साथ साथ जहां पे अपने लिए शुक्र किया जाए कि अल्लाह तूने मुझ पर ये नेमतें की हैं, तो अपने माँ बाप पर भी जो नेमतों की बारिश हुई थी उनका शुक्र अदा करना चाहिए। तो पहली बात वो क्या कहते हैं कि अल्लाह तू मुझे थाम, मुझे पकड़, कि कहीं मैं बहक ना जाऊं, मैं मगरूर ना हो जाऊं। दूसरी बात, मैं तेरी अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर की हैं। तीसरी बात, वह अला वालिदैया, जो तूने मेरे वालदेन पर की हैं, सुभान अल्लाह। चौथी बात, वान आमला सालेहन तरदाहू, और मैं ऐसे अमल कर जाऊं जो तुझे पसंद आए। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं अमले सवाले करूं जिनको लोग कहें कि वाह भाई वाह, क्या सखी है, क्या कारिया है, क्या जो है वो अमल करने वाली है, या क्या ये अमल करने वाला, यानी लोग मेरी नेकी की तारीफ करें मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे हाथों ऐसे काम अंजाम पाए जो तेरी रजा के मुताबिक हो। वान आमला सालेहन तरदाहू, यह है असल मायार, ऐसे अमले सवाले करूं जो तुझे राजी कर दें, जो तुझे पसंद आ जाए। अल्लाहु अकबर। पांचवी बात कही, वादखिलनी बिरहमती कफी इबादिक सालिहीन, और अपनी रहमत से मुझको अपने सवाले बंदों में दाखिल कर ले। इसके मानी क्या है कि आखिरत में मेरा अंजाम नेक लोगों के साथ हो ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। और याद रखें कि किसी का अमले सवाले उसको जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह की रहमत ना मिल जाए। एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी को भी इसका अमल जन्नत में नहीं पहुंचाएगा। अर्ज किया गया, वला अंता या रसूल अल्लाह, क्या आपके साथ भी यही मामला है? आपने फरमाया, हाँ, मैं भी महज अपने अमल के बलबूते पर जन्नत में ना चला जाऊंगा जब तक कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुझे ढांप ना ले। और अब आप देखें कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़ने के बाद, ये समझने के बाद, आइए हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह, या खालिकू, या मालिकू, या अल्लाह, या हय्यू, या कयूमु, या अल्लाह, या हन्नानु, या मन्नानु, या अल्लाह, मैं भी आपसे वही दुआ मांगती हूँ जो तेरे नबी करीम सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुझसे मांगी थी। अल्लाह, तेरे अजीम पैगंबर ने जो तुझसे दुआ मांगी थी, मैं भी आपसे वही दुआ मांगती हूँ, तू मेरी दुआ को कबूल कर ले, तू मुझ पर फजल फरमा, तू मुझे थाम ले, तूने मुझे खूबसूरत बनाया, तूने मुझे बेहतरीन जिस्म दिया, तूने मुझे इल्म से नवाजा, औलाद दी, वालदैन, शौहर, दुनिया भर की नेमतों से नवाजा, तूने अपनी नेमतों की मुझ पर बारिश कर दी। अल्लाह, मुझे थाम ले कि इन नेमतों को पाने के बाद मैं कहीं तेरी नाफरमानी ना करने लग जाऊं। रब्बी औज़िनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया। और अल्लाह, जो तूने मेरे वालदैन पर नेमतें की हैं, मेरे वालदैन को तूने जो नवाजा और उन पर नेमतों की बारिश की, अल्लाह, मैं तेरे उस एहसान का भी शुक्र अदा करना चाहती हूँ और करती ही रहूं, तू मुझे इसकी तौफीक दे। और नंबर 3, या रब्बुल इज्जत, तू मुझे ऐसे अमल करने वाला बना, अमले सवाले, जिसकी तौफीक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, ऐसे अमले सवाले जो तुझे राजी कर दे, तेरे पैगंबर सुलेमान की तरह तुझसे तेरी रजा और हम अमले सवाले की तौफीक मांगते हैं। और या रब्बुल इज्जत, हम आपके सामने बड़ी आजजी के साथ इसका इतराफ करते हैं कि हमारे हमारे अमल ना होने के बराबर है, बड़े ही हकीर हैं हम, बड़े ही कमजोर हैं, और बहुत ही छोटी मोटी सी नेकियां हैं और तू जानता है उनकी हकीकत को, हमारे हाथ भी उठे हैं, दामन भी फैला है, और हम आपसे जन्नत का सवाल करते हैं और जन्नत तेरे फजलो करम के नतीजे में, और या अल्लाह, कयामत के दिन अपने रहमो करम से हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर लेना, हमें भी, हमारे वालदैन को, हमारे बहन भाइयों को, हमारे शोहरों को, हमारी बच्चों को, बच्चियों को, और शोहरों की तरफ से उनकी बीवियों को, और अल्लाह, कुल मोमिन मोमिनात को, तो हम सबको जो है वो अपने फजल में दाखिल कर ले। वादखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, और अपनी रहमत से अपने नेक मुत्तकी लोगों में हमें शामिल कर ले। यह है एक सवाल इंसान का तरीका कि नेमतें, हकूमत, कुर्सी और सरदारी, डिग्री, चौधराहट, कोई कहीं भी जीत जाना, उसको जो है वो फिरौन नहीं बनाती, बल्कि वो सरापा शुक्र बन जाते हैं और पूरा का पूरा अपने वजूद को अल्लाह के आगे मुती कर देते हैं। और ये आयत नंबर 19 में जो दुआ है ना, इसको याद कर लीजिए, रब्बे औज़िनी अन अशकुरा नेमतका अल्लती, यहां से लेकर फी इबादिका सालिहीन। फिर इसके बाद जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है उनका एक और वाकया जो है यहाँ पर आया है, वतफक्कदत तैरा, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर परिंदों का जायजा लिया। तफक्कदा, इसका रूट है फा काफ दाल, इसके मानी होते हैं वक्ती तौर पर किसी चीज का मौजूद होने के बावजूद ना मिलना, और ता आ गया है तो मानी है तलाश करना, ढूंढना, गुमशुदा चीज को तलाश करना। व तफक्कदा, और उन्होंने जायजा किया, लिया, तलाश किया, अब तैरा परिंदों का, तो उन्होंने परिंदों का जायजा लिया। फकाला, पस कहने लगे, मा लिया, क्या हो गया है मुझको, ला अरल हुदहुद, कि मैं हुदहुद को नहीं देखता। तो एक दफा जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया और कहा, क्या बात है कि फला हुदहुद नजर नहीं आ रहा, इसकी जमा है हदाहिद, अमकाना मिनल गायबीन, क्या वो कहीं गायब हो गया है, हम या वो कहीं गायब हो गया है। तो ये हुदूद जो है ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में था, ये भी एक परिंदा था। और आप यूं समझे कि हुदूद की हैसियत जो थी वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में एक इंजीनियर की सी थी। और जब रोल कॉल वो अपने परिंदों की ले रहे थे तो उसमें वो हुदूद नजर नहीं आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो इस पर बड़े ही फिकरमंद हुए और कहने लगे कि कहीं वो गायब हो गया है। लउअज्जिबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयातीयन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। तीन बातें उन्होंने कही। पहली बात क्या कि लउअज्जिबन्नहु अज़ाबन शदीदन, मैं उसे सख्त सजा दूंगा। नंबर दो, औ लअज़बहन्नहु, या मैं उसको जिबा ही कर दूंगा। नंबर तीन, औ लयातीयन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, वरना उसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि क्या है कि हुदूद को अपनी गैर हाजिरी का कोई उजर पेश करना होगा। इससे क्या बात पता चलती है? ये जो आयात हैं, आयत नंबर 20 और 21, इससे ये बात पता चलती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे उनका इतना बड़ा लश्कर था, लेकिन उसकी भी जायजा लिया जाता था, उसकी भी रोल कॉल होती थी। और आप देखें कि इतने बड़े जो है वो वक्त के बादशाह हैं, और इसके बावजूद जो है उन्हें जो है वो जब रोल का ली है तो हुदहुद नजर नहीं आया। और इस पर अब आप देखें कि उनका अंदाज कैसा है कि मैं जरूर उसको सजा दूंगा, मैं जरूर उसको वरना जिबा कर दूंगा, वरना मुझे वो कोई उजर पेश करे। तो मुफस्सरीन क्या कहते हैं कि इससे ये बात पता चलती है कि जैसे कोई भी, जैसे उस्ताद है, और उस्ताद जो है उसके सामने अगर उसका कोई तालविल जो है अगर वो मौजूद नहीं है तो उसको जो है वो उजर पेश करना चाहिए कि वो गैर हाजिर क्यों है। या कहीं भी कोई ऑफिसर है तो उसका मतहत मौजूद नहीं है तो उसको अपनी गैर हाजिरी के लिए कोई, उसके पास उजरे उजर होना चाहिए, उजरे शरई। तो यहां पे भी यही बात है कि अगर वो उजर पेश करे तो ठीक है, वरना फिर मैं उसको जो है वो सजा दूंगा। तो अब आप देख लें कि आपकी क्लास में अक्सर लोग हुदहुद होते हैं ना, क्लास में होते नहीं है या आते नहीं है या लेट आते हैं, तो हुदहुद। और ये जो हुदहुद था ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में इसकी हैसियत क्या थी? इंजीनियर की थी। ये क्या करता था? जब कभी चटियल मैदान में आपका लश्कर पहुंचता, वहां पानी की जरूरत होती, तो हुदहुद जगह बताता जहां जमीन के नीचे पानी होता, फिर जिन उस जगह को खोदकर पानी निकालते थे। तो ऐसे ही किसी मौके पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को बुलाया, जब वो नहीं मिला तो वो नाराज हो गए और कहने लगे या तो वो उजर पेश करे वरना मैं सख्त सजा दूंगा या उसको जिबा कर दूंगा। कुछ देर बाद ही सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हुदहुद को पेश कर दिया गया। था मकसा। मकसा जो है इसके मानी है कि इंतजार में ठहरना, यानी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी। फमका था, बस ठहरा रहा, गैरा बई दिन, थोड़ी देर, कुछ ज्यादा देर नहीं गुजरी थी। फकाला, फिर हुदूद ने आकर कहा, अहद तू, मैंने जो है वो मैं खबर लाया हूं, मैंने अहाता किया है, बिमालम तुहित बही, जिसकी आपको खबर नहीं है, यानी मैं ऐसी चीज की खबर लाया हूं जिसकी आपको खबर नहीं। वजह तू का, और मैं लाया हूं का आपके पास, मिन सबा, इन सबा से भी, नबा यकीन, एक यकीनी खबर। और सबा जो है ये एक कौम का नाम भी था और एक इलाके का नाम भी था। तो उसने कहा कि मैं जो है वो जो सबा है, कौमे सबा या जो इलाका है सबा, उसके मुतल्लिक एक यकीनी खबर लाया हूँ, बिनबा इन यकीन, एक यकीनी बड़ी खबर लाया हूँ। इन्नी वजह तू इमरातन, वहां मैंने एक औरत को पाया है, कमले को हम हुकूमत करती है इन पर, यानी सबा के इलाके पर या उनकी कौम पर वो हुकूमत करती है। वह उतियत मिन कुल्ले शेइन, और उसको हर तरह का सामान दिया गया है। मतलब क्या है कि उसके पास सामान की कसरत है। वलहा अर्शुन अजीम, और उसका जो तख्त है बड़ा अजीम शान है। यानी हुदूद ने मलकाए सबा के तख्त का जो है ये खास तौर पर जिक्र किया कि उसके पास जो है एक अजीमु शान जो है वो तख्त है। इसके तख्त में तरह तरह के हीरे जवाहरात और मोती लगे हुए थे और वो सोने से मुजयन था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उसका तूल 80 हाथ, उसकी चौड़ाई 40 हाथ, उसकी ऊंचाई 30 हाथ थी। तो मलकाए सबा का जो तख्त था बड़ा ही कीमती, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा जो था। तो यहाँ पे भी अर्शुन अजीम, तो उसका तख्त बड़ा अजीम शान है। वजह तो हुआ, मैंने देखा उसको, उस मलका को, उस औरत को, कौमहा और उसकी कौम को, यसजुदून लिश्शम्सी, कि वो सूरज के लिए सजदा करते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। यानी मैंने देखा कि मलका सबा और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज के आगे सजदा करती है। तो इनके यहाँ सूरज की पूजा की जाती थी। इससे क्या बात पता चलती है कि ये जो हुदूद था ये अल्लाह की इबादत करता था, ये भी जो है वो अल्लाह को मानने वाला था। और आपको पता है कि चिरिंद परिंद सब जो है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो अब ये भी जो है ये कह रहा है कि वो औरत जो हुकूमत करती है सबा पर, वो और उसकी कौम के लोग अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं। बस ज़य्यना लहुम शैतानु आमालहुम, और शैतान ने इनके लिए इनके अमाल को खूबसूरत बनाकर पेश किया है। पीछे शुरू में भी आपने पढ़ा था ना कि वो लोग जो आखरत पर ईमान नहीं लाते तो शैतान उनके लिए अमाल को खूबसूरत बना देता है ना, अल्लाह उनके अमाल उनके लिए खूबसूरत बना देता है। आयत नंबर 4 में आपने पढ़ा था, यहाँ पे भी क्या है, बस ज़य्यना लहुम शैतानु आमालहुम, शैतान ने उनके अमान इनके लिए खूबसूरत बना दिए। फसद्दहुम अनिस सबीली, फिर उनको असबील से रोक दिया। असबील से मुराद है तौहीद, तो उन्हें सिराते मुस्तकीम से, सीधे रास्ते से, तौहीद से रोक दिया, वो शिर्क करने लगे। फहम ला या तदून, और इस वजह से उन्हें सीधा रास्ता जो है वो नहीं मिलता। तो आप देख लीजिए कि इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि किस तरह से जो है वो हुदूद जो है ये बताता है कि एक अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए और वो लोग शिर्क कर रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार जानदारों को ना मारो, मारने से मना किया, चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और लटोरा। तो हुदहुद को भी जो है वो इसलिए मारने से मना किया गया कि वो तौहीद परस्त, तो कहा कि उसको जो है वो ना मारो। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये आयत नंबर 24 पर जो है वो हुदूद का जो पैगाम है, उसकी जो गुफ्तगू है, ये खत्म हो जाती है। और अब आगे से जो है ना अल्लाह ताला का इरशाद जो है वो शुरू हो जाता है। बाज लोगों की राय तो ये है कि सूरज को सजदा करती है मलका सबा और उसकी कौम, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। बाज कहते हैं कि यहाँ तदून पे खत्म हो जाता है। आगे से फिर अल्लाह ताला समझाते हैं कि अल्लाह यसजुदु लिल्लाहिल्लज़ी युख्रिजुल खबअ फिस समावाती वल अर्दी वयालमु मा तुखफूना वमा तुलिनून अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, के अल्लाह क्यों नहीं यसजुदु वो सजदा करते लिल्लाही अल्लाह को। पीछे पीछे आपने पढ़ा ना कि शैतान ने उनके अमाल को खूबसूरत बना दिया, उन्हें तौहीद के रास्ते से जो है वो रोक दिया, इस वजह से वो सीधा राह नहीं पाते कि अल्लाह को सजदा करे। अल्लाह यसजुदु लिल्लाही, कि वो अल्लाह को सजदा करे। अल्लाह भी कौन, अल्लज़ी वो ज़ात, युख्रिजुल खबआ, युख्रिजु वो निकालता है, अल खबा छुपी हुई चीज को। खबा जो लफ्ज है इसका रूट है खा बा हमजा, हमजा, और इसके मानी है कि पोशीदा और मख्फी खजाना, ऐसा पोशीदा खजाना जिसका पहले से किसी को पता ना हो, जैसे कोई मोइम्मा समझ ले, या जमीन की नबातात जो अभी जहूर में नहीं आई। बारिश को भी तखब्बुस समा कहा जाता है, क्योंकि बारिश जमीन आसमान के अंदर छुपी भी होती है। इसी तरह तेल, जमीन के अंदर जो गैसें वगैरह होती हैं, उसके लिए भी खब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, खबुल अर्द। तो खब के मानी क्या है? पोशीदा, कि वो सजदा करें उस अल्लाह के लिए, अल्लाह जी युखरिजुल खबा फिस समावाति वल अर्दी, जो आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजें निकालता है। तो आसमानों से छुपी हुई चीजें क्या निकलती हैं? आसमान से बारिश होती है, आसमान से बारिश होती है। और फिर जब आसमान से बारिश होती है, तो जमीन की पोशीदा चीजें क्या हैं? पौधे निकलते हैं, कहीं तेल भी निकलता है, जलने वाली गैसें हैं, मादनियात हैं। तो ये सारे काम जो है करने वाला कौन है? ये अल्लाह है, ये कुवत अल्लाह के पास है। यालमु मा तुखफूना व मा तुलिनून, और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छुपाते हो और जाहिर करते हो। तो अल्लाह ताला का इल्म जो है वो हर चीज पर मुहीत है, वो गैब का इल्म रखता है। और अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जो अर्श अजीम का मालिक है। इसके मानी ये हैं कि यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि असल में अल्लाह का जो अर्श है, जो अल्लाह का तख्त है, जो अल्लाह की हुकूमत है, वो अजीम है, ना कि वो जो मलका सबा है उसकी। तो यहाँ पर जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का तारुफ जो है वो दिया जा रहा है, ये बात बताई जा रही है कि असल जो बादशाहत है, जो असल हुकूमत है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। और जिसके ये और ये और ये करिश्मे हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, अल्लाह के जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जो अर्श अजीम का मालिक है। तो उसको फिर किसको सजदा करना चाहिए? सूरज को नहीं, बल्कि अल्लाह ताला को सजदा करना चाहिए, अल्लाह के आगे जो है वो झुकना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, काला बोले, सननजुरु, अनकरीब हम देखते हैं, असदकता, ए हुदूद, क्या तूने सच कहा, हम कुनता मिनल काजिबीन, या तू झूठ बोलने वालों में से है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है अपना एक दावती खत लिखते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खत लिखे थे ना, और उन खतों में क्या किया था? दावा किया था। आप ऐसी ईमेल भेजती हैं, आप ऐसे खत लिखती हैं जिसमें आप लोगों को जो है वो इस्लाम का पैगाम दें, जैसे फेसबुक पर अपनी ईमेल के जरिए और डिफरेंट कार्ड के जरिए जो है वो आप दावा करें। अब आप देखें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक परिंदे के जरिए ये बात पता चली है कि हमसाए मुल्क में एक बादशाह औरत और उसकी कौम के लोग शिर्क कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? वो फौरन ही जो है एक खत लिखते हैं। इज़हब, तू जा, ये ऑर्डर का सीगा है, ज़हबा से है, तू जा, बेकिताबी मेरे खत के साथ। काफ्ताबा जो है कताबा लिखना भी होता है, और किताब लेटर को भी कहते हैं, कि मेरा ये खत लेकर जा, हाजा ये फअल्के इलेहिम, फिर उनकी तरफ डाल दे, उन लोगों की तरफ डाल दे, सुम्मा तवल्ला अनहुम, फिर उनसे हटकर जो है उनसे हट जा, यानी खत डालकर फिर अलग हटकर खड़ा हो जा, फंजुर, फिर देख, माजा यरजेउन, कि वो क्या रद्द अमल जो है वो जाहिर करते हैं। तो यहाँ यानी वो क्या जवाब देते हैं। अब यहाँ पर जो है आप देखें कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो बड़ी हिकमत के साथ जो है, जो ही उनको पता चल जाता है कि शिर्क हो रहा है हमसाए मुल्क में, तो फौरन जो है एक खत के जरिए आप दावा करते हैं। और ये जो कहते हैं कि एक जानिब हटकर छुप जा, खड़ा हो जा, फंजुर माजा यरजून, के क्या वो रद्द अमल का इजहार करते हैं, माने ये कि वो खत देखने के बाद आपस में क्या गुफ्तगू करते हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खत में जो है उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी। कालत या अय्युहल मलाऊ, मलका बोली, कालत ये मोनस का सीखा है, मलका बोली ए अहले दरबार, मलाऊ ए दरबारियो, इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम, कि मेरी तरफ एक बड़ा ही अहम खत फेंका गया है। किताबुन खत, करीमुन अहम, यहाँ पे करीमुन जो है इसके मानी है अहम के, बावकत, बड़ा ही खास खत मेरी तरफ फेंका गया है। क्योंकि अजीब तरीके से आया था ना, तो इसलिए उसने कहा कि उल किया, मेरी तरफ डाला गया है, फेंका गया है। दूसरी बात की इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, दूसरी बात ये कही कि वो सुलेमान की तरफ से है। तीसरी बात, और अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया है। खत का मजमून क्या था? अल्लाह तआलू अलैया वातूनी मुस्लिमीन, कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो, अल्लाह तआलू अलैया मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो, वातूनी मुस्लिमीन और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। अब आप देखें कि यहां पे हमें क्या बात पता चलती है कि खत लिखने का तरीका क्या है, कि अपना नाम लिखा जाए, जैसे आप लिखें और अपना नाम लिखें, कि मसलन आप कहती हैं कि शायदा की तरफ से, बतूल की तरफ से, फरजाना रेहाना की तरफ से, आप अपना नाम लिखती हैं कि फलां की तरफ से, फिर जिसको लिखती हैं उसके नाम। फिर दूसरी बात क्या है कि बिस्मिल्लाह, आगाज बिस्मिल्लाह से करना चाहिए और अल्लाह के नाम से, और फिर रहमान रहीम। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो है, ये पिछली जो कौमें हैं उनके पास भी ये आयत जो थी ये नाजिल हुई थी। फिर तीसरी बात ये कि मजमून जो है बड़ा वाजे होना चाहिए, मुख्तसर और खास मजमून वाजे हो। अब आप देखें कि खत का जो असल मुद्दा है वो क्या है, अल्लाह तआलू अलैया वातूनी मुस्लिमीन, कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो बल्कि मेरी अतात में दाखिल हो जाओ, वातूनी मुस्लिमीन यानी मुसलमान जो है वो बन जाओ। तो खत मुख्तसर वाजे और ताकि टू दी पॉइंट मैसेज जो है उसको मिल सके। आपने पीछे आयत नंबर 14 में पढ़ा था ना, फिरौन ने क्या किया था और उसके साथियों ने क्या किया था, जुल्मा उलुवा। तो यहां पे भी अल्लाह तआलू अलैया, इसका मतलब क्या है कि सरकशी ना दिखाओ, खुद परस्ती मत करो, शिर्क मत करो, बल्कि अल्लाह की अतात करो। कालत या अय्युहल मलाउ, खत सुनाने के बाद मलका ने कहा ए मेरे दरबार वालो, ए सरदारा ने कौम, मीम लाम हमजा, इसका मतलब भरना भी होते हैं और इसके मानी होते हैं जैसे रोब से दरबारी जो होते हैं, सरदार जो होते हैं वो दरबार को भर देते हैं, किसी महफिल को भर देते हैं, तो इसलिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि उनको देखकर आंखें रोब से भर जाती हैं या वैसे वो भर देते हैं महफिल को रौनक से। तो क्योंकि उनका वजूद सरदारों का बड़ा अहम होता है ना, तो ऐ मेरी कौम के सरदारों, अफ्तूनी मुझे फतवा दो, फी अमरी मेरे मामले में, अफ्तूनी फाता वो मुझे मशवरा दो। तो फतवा जो होता है मुश्किल मसले का जवाब पूछना, आम मसाइल का जवाब नहीं, मुश्किल मसले का जवाब। और फाता वो क्योंकि एक बड़ा अहम मामला था, अजीब तरीके से खत आया था और उसमें जो है वो मुसलमान होने की दावत दी गई थी कि मेरी बात मानो, मुस्लिम हो जाओ, तो अब इस अहम मामले पर वो मशवरा कर रही है अपने दरबारियों से। और फिर कहती है मां कुंतु कातियातन अमरन, के मैं नहीं हूं कातियातन, मैं नहीं हूं काटने वाली अमरन किसी काम को, यानी मैं किसी भी मामले का फैसला नहीं करती, मैं कतई बात जो है फाइनल नहीं उसको करती, हत्ता तशदून, जब तक के तुम मशवरा ना दो। तशदून के दो मानी हैं, जब तक के तुम हाजिर ना हो जाओ, जब तक के तुम गवाह ना बन जाओ, तो तुम्हारी गवाही, तुम्हारी बात राय लेने के बाद फिर मैं फैसला करती हूँ। इससे क्या बात पता चलती है कि उस जमाने में भी जो था वो ये नहीं था कि कोई डिक्टेटरशिप थी, बल्कि क्या था कि मलका जो थी वो अपने जो कौम के सरदार थे उनके मशवरे से अपने फैसले करती थी। कालू, वो लोग बोले, नहनु नहनु उलू कुवतिन, कि हम ताकतवर लोग हैं, कुवत वाले हैं, यानी हम जिस्मानी तौर पर भी ताकतवर मजबूत हैं, उसके बाद हमारे पास जो है वो असलहा भी है, सामान भी है। वह उलू बासिन शदीदिन, और हम लड़ने वाले लोग हैं। बास का लफ्ज जो है ये जंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हम सख्त जंगजू लोग हैं। वल अमरु इलैकी, और आगे फैसला तुम्हारे हाथ में है। फंजुरी, बस तू देख, माजा तामुरीन, के तू जो है हम हमें क्या हुक्म देती है। कालत, मलका बोली, इन्नल मलूका, बेशक बादशाह, इजा दखलु करियतन, जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं, अफसादूहा, तो उसको उसमें फसाद पैदा करते हैं, वजालू, और कर देते हैं, इज्जता अहलिहा, इसके इज्जत वालों को, अजिल्ला जलील, तो इसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, वकजाले का यह फलून, और यही कुछ वो किया करते हैं। तो अब यहां पर जो है मलका जो है वो ये बताती है कि जब कोई बादशाह किसी बस्ती या किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो क्या करते हैं, नंबर एक उसको उजाड़ देते हैं, उसमें तबाही मचाते हैं। कैसे? कि खुशहाली, ताकत, इज्जत के तमाम जराए खत्म कर देते हैं। नंबर दो, जो उसके इज्जतदार होते हैं उनको जलील कर देते हैं। इसके माने ये हैं कि किसी की इज्जत महफूज नहीं रहती, हर तरफ जो है वो ताट होती है और मारधाड़ होती है, इज्जतें लुटती हैं, तो वो आम लोगों की जो है वो बात करती है। फिर तीसरी बात, वकजाली का ये फलून, और बस ये लोग कुछ ऐसा ही किया करते हैं, यानी यही कुछ वो लोग किया करते हैं। तो इसके माने क्या हैं? मुफस्सरीन कहते हैं कि ये अल्लाह का कौल भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि मलका सबा का कॉल हो, के उसी की बात पर जो है वो इजाफा हो। तो आम तौर पर लोग ऐसा करते हैं, तो वो समझी थी कि ये भी जो है कोई आम लोगों की तरह है। वा इन्नी मुर्सिलातुन इलैहिम बिहदियतिन, अब जो है वो मलका सबा इस बात का अंदाजा करना चाहती है कि ये कोई दुनियादार है, इसको कोई दौलत चाहिए, इसे क्या चाहिए। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं यूं करती हूँ कि मैं कोई हदिया तोहफा देकर भेजती हूँ, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन लोग हैं। वह इन्नी मुर्सिलातुन, और बेशक मैं मुर्सिलातुन, मैं भेजने वाली हूँ, मैं भेजती हूँ, इलेहिम इनकी तरफ, बेहदियतिन एक तोहफा, पर नाजिरतुन पस देखती हूँ, बिमा यरजिउल मुरसलून, कि क्या जवाब लाते हैं जो कासिद हैं, कि जिनको मैं तोहफा देकर भेजूंगी तो मेरे एलची क्या पैगाम लेकर आते हैं। फलम्मा जा सुलेमाना, फिर जब वो मलका का जो सफीर था वो आया सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, काला, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, आ तुम दूननी बेमालिन, क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो जो तोहफे तहाइफ देखे तो पूछा, क्या तुम मुझे मदद देना चाहते हो। बिमालिन, माल से। फमा आतानी अल्लाहु खैरु मिम्मा आताकुम, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो इससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दिया है। फमा आतानी, पस जो दिया है मुझे अल्लाह ने, फमा पस जो कुछ, आतानी दिया है मुझको अल्लाहु अल्लाह ने, खैरुन ज्यादा बेहतर है, मिम्मा आताकुम उससे जो तुम्हें दिया है, बल अंतुम बल्कि तुम, बेहदीयतेकुम अपने तोहफे से, तफरहून तुम खुश रहो, यानी तुम्हारा तोहफा तुम्ही को मुबारक। इससे क्या बात पता चलती है कि उन्होंने जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो जो तोहफे तहाइफ भेजे थे मलका ने, उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। क्यों? इसलिए कि वो दरअसल जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समझा कि ये रिश्वत के लिए भेजे है ताकि मैं खुश हो जाऊं और इस तरह उसकी हुकूमत बच जाए, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नबी थे, वो कुफर के साथ मसालियत नहीं कर सकते थे कि वो तोहफे तहाइफ देखकर जो है वो खामोश हो जाते और उसे कुछ भी ना कहते, ऐसा नहीं हो सकता था। तो इसलिए सुलेमान अलैहि सलाम ने जो है वो तोहफे तहाइफ कबूल करने से इनकार कर दिया। क्यों? एक नबी जो है वो कुफर के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता, तो कभी एक कुफर के साथ जो है वो मसालियत नहीं करता, तो इसलिए सुलेमान अलैहि सलाम ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। कहा तुम्हारे तोहफे तुम्ही को मुबारक, कि मुझे ये माल नहीं चाहिए कि मैं मालो दौलत की रिश्वत लेकर और तुम्हारा मामला एक मुशरिकाना जिंदगी के मामले में तुम्हें आजादी दे दू। तो मेरे रब ने जो कुछ मुझे दिया है तो इससे ये जो तुम्हारा माल है इससे मेरा माल बहुत अच्छा है। का इलेहिम, कि लौट जा इनकी तरफ, फला नाती यन्नहुम भी जुनूदिन, हम जरूर बजरूर लेके आएंगे इन पर लश्कर, हम इन पर जरूर बजरूर ऐसे लश्कर लाएंगे, ला किबाल लहुम बिहा, कि जिनका वो मुकाबला भी ना कर सकेंगे, कि मैं इन पर ऐसे लश्कर लेकर चढ़ाई करूंगा, ला किबाला मुकाबला नहीं कर सकते लहुम मेरे लश्करों का, बिहा इसके साथ, वाला नुखरी जन्ना हूं, और हम निकाल देंगे इनको, मिन्हा इससे, हम जरूर बजरूर निकाल देंगे इनको इससे, अजिल्लतन जलील करके, वहम सागिरून, और वो जलील हो जाएंगे, सगीर जलील होकर छोटे बनकर रहना जो है वो कबूल कर लेंगे। वाला सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा या अय्युहल मलाऊ, अहले दरबार, अय्युकुम यातीनी बे अर्शिहा, तुम में से कौन इसका तख्त मेरे पास लाता है, कबला यातूनी मुस्लिमीन, कबल इसके कि वो लोग मुती होकर मेरे पास हाजिर हों। क्योंकि हुदूद ने क्या कहा था कि इसका तख्त जो है बड़ा ही अजीम शान है। तो अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबारियों को एक मौजा भी दिखाना चाहते थे कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को कैसी गैर मामूली कुदरत अता की है, बाकी लोगों को यकीन आ जाए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के नबी हैं। और ये जो तख्त था 80 हाथ लंबा, 40 हाथ चौड़ा, ऊंचाई 30 हाथ थी, इसमें मोती, सुर्ख याकूत और सब्ज जमुर्द जुड़े हुए थे, और सोने से ये बना हुआ था, बड़ा ही कीमती ये तख्त था। तो पूछा कि कौन इसका तख्त जो है वो मेरे पास लेकर आएगा इससे पहले कि वो मेरे पास मोती होकर आए। काला इफरीतुम मिनल जिन्नी, जिन्नों में से एक कवि हेकल जिन ने कहा, तो जिन्नों में से जो एक बड़ा ही मजबूत जिन था उसने कहा। अब आप देखें कि यहाँ पे इफरीत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसका रूट है ऐन फा रा, ऐन फा रा कवि हेकल जिन को कहते हैं, जो निहायत मूजी भी हो और शरीर भी हो। तो मूजी और शरीर जिन ने कहा अना आती का बही कबला अन तकूम मिन मकामिक, कि मैं इसे हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठे। इससे क्या बात पता चलती है कि उस जिन ने कहा कि इससे पहले कि आप ये जो जिस जगह बैठे हुए हैं इससे आप उठे, तो उससे पहले उसे लाकर जो है मैं आपके पास हाजिर कर दूंगा। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो जिन था अल्लाह ताला ने इसे इंसानों के मुकाबले में गैर मामूली कुव्वत से नवाजा था। कोई भी इंसान चाहे कितना ही जोर आवर हो लेकिन उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो बैतल मकदस से यमन जाए सबा के इलाके में और वहां से तख्ते शाही उठा लाए। और तकरीबन ये जो है वो इतना तवील सफर है और फौरन जो है वो कर दे, जैसे 1,500 मील का ये फासला, और एक तरफ जाना और दूसरी तरफ आना, तो 3,000 मील बन जाते हैं ना, और फौरन वो इतनी जल्दी से कर ले इससे पहले कि आप इस जगह से उठे। कहते हैं कि सुबह से लेकर दोपहर तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुकदमात की समात करते थे। तो एक राय ये है कि वो वक्त मुराद है। बहरहाल उनकी जो दरबार की नशिस्त थी वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटों की होगी। तो उसने ये कहा कि मैं ये जो 3-4 घंटे हैं इसके अंदर मैं जो है वो एक तवील सफर करके यानी 3,000 मील का जो सफर है वो मैं तय करके और आपका वो तख्त लाकर आपको जो है वो दे दूंगा। और साथ ही कहा, इन्नी अलैहि लकवीयुन अमीन, और मैं इसकी ताकत रखता हूं और मैं ईमानदार हूं। ये बड़ी खास बात है कि कोई भी जिम्मेदारी की अदायगी के लिए जरूरी है कि इंसान जो है वो एक तो मजबूत हो, और फिर दूसरा ये कि वो अमीन हो, ताकतवर हो। क्यों? अगर कोई अमीन नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो फिर क्या है कि वो सही तरीके से उस ईमानत का हक नहीं अदा कर सकता ना। और वो जो तख्त था जिसपे हीरे जवाहरात थे, वो सोने का था, यानी उसमें से कुछ चुराऊंगा भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि उसको मैं अपने पास रख लूं और आपको ना ला कर दूं, उसको लेके उड़ जाऊं कहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है कि वह इन्नी अलैहि लकवीयुन अमीन, मैं इसकी ताकत भी रखता हूं और ईमानदार हूं। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इन्नी हफीजुन अलीम, मैं हिफाजत करूंगा और मैं जानता भी हूं, यानी मुझे मुल्क के खजानों पर मुकरर कीजिए, मैं हिफाजत भी करूंगा और मैं जानता भी हूं। उन्होंने कहा था इन्नी हफीजुन अलीम, और ये क्या कहता है, वह इन्नी अलैहि लकवीयुन अमीन। इससे ये बात पता चलती है, जैसे आपके पास कोई भी जिम्मेदारी हो तो आप जो है, आपके लिए जरूरी है कि आप उसके लिए ईमानदार हो और उसके साथ ही आप मजबूत भी हो, ताकतवर हो, ताकत हो, सेहत हो, ताकि आप उस जिम्मेदारी को अदा करने की जो है वो हिम्मत रखते हो। एक तो जिन ने ये बात कही, दूसरी बात क्या थी, अब एक और शख्स था, काला, कहा अल्लाजी, उस शख्स ने, इंदहु इल्मु मिनल किताबी, जिस शख्स के पास किताब का इल्म था। ये कौन शख्स था? कहते हैं ये बनी इसराइल में से ही था कोई, और बाद कहते हैं ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीर था, इसका नाम आसिफ था। तो इसने कहा, जिसके पास किताब का इल्म था, तना आती का बही कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसे लाके देता हूं। अब आप देखें कि 3,000 मील का सफर जो है वो क्या कहता है कि इससे पहले कि आप अपनी पलक झपके, कबला यरतद्दा, यरतद्दा का मतलब क्या है कि इससे पहले के लौटे, रद्द करना, लौटना, यही का तेरी तरफ, तरफुक, तरफ जो है ये आंख को कहते हैं, पलक झपकने को कहते हैं, कि इससे पहले कि आप अपनी पलक को झपकें, मैं उससे पहले जो है आपको ये तख्त लाकर दे दूंगा। फलम्मा राहू, जो ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, मुस्तकिरन इंदहू, तो उसको अपने पास रखा हुआ पाया। यानी उसने तो कहा था ना पलक झपकने से पहले ला दूंगा, तो क्या हुआ, जो ही आपने पलक झपक कर देखा उधर, मुस्तकिरन रखा हुआ था, इंदहू आपके पास, आला कहने लगे, हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। सुभान अल्लाह, फिरौन नहीं बने, नमरूद नहीं बने, हमान नहीं बने, और गुरूर में मुब्तिला नहीं हुए, क्या कहने लगे, हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये यबलुवनी अशकुरु अम अकफुर, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या फिर काफरे नेमत बन जाता हूं। वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, और जो कोई शुक्र करता है, इसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है। वमन कफरा फइन्न रब्बी गनीयुन करीम, और जो कोई ना शुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज और अपनी जात में आप बुजुर्ग है। अब आप देखिए कि यहां पर जो है, अब इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं कि वो शख्स जो एक लम्हे के अंदर तख्त को लेकर आ गया तो ये कौन था, ये क्या था। बस अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके पास किताब का इल्म था, यानी अल्लाह का वो कोई खास बंदा था, और इसलिए वो फौरन ही तख्त को लम्हे भर के अंदर उसने जो है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाकर उसको पेश कर दिया। लेकिन जब ये मौजा हो गया तो इस गैर मामूली कुव्वत के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर फखर का कोई जज्बा पैदा नहीं हुआ, वो सरतापा तवाजो बनकर अल्लाह के आगे झुके रहे। तो असल बात जो यहाँ पे गौर करने वाली है वो क्या है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है, आपकी हुकूमत भी गैर मामूली, आपकी बादशाहत भी, आपके मोजजात भी, लेकिन आप खुदा परस्त थे, आप अल्लाह का शुक्र करने वाले थे, आप दीन के मामले में कंप्रोमाइज करने वाले नहीं थे, आप दौलत और दुनिया से मोहब्बत करने वाले नहीं थे, और वो तख्त भी आपके सामने आ गया, और इसके बावजूद जो है आप फौरन अल्लाह की तरफ जो थे वो रुजू करने वाले थे। तो इससे क्या बात पता चलती है, अमल का असूल क्या निकलता है कि जब आप रोड टेस्ट एक दफा में पास कर लें तो क्या कहें, हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये नहीं कि आप बहुत जहीन है, आप बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, बहुत जल्दी सीख लेती हैं, तो क्या है, हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, आपके टेस्ट में जो है वो 100% मार्क्स आते हैं, 99 100% बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो क्या है, हाजा मिन फजल रब्बी, आपको सबक बहुत जल्दी याद हो जाता है, हाजा मिन फजल रब्बी, आपके बेटे ने बहुत जल्दी हिफ्ज कुरान कर लिया, हाजा मिन फजल रब्बी, है ना, आपके बच्चे नेक हैं, आपका कोई क्रेडिट नहीं है, हाजा मिन फजल रब्बी, आपको अल्लाह ताला ने डॉक्टर बना दिया, और भी बहुत से डॉक्टर हैं, आप इम्तिहान पास कर गए, हाजा मिन फजल रब्बी, आपका क्लिनिक, आपका बिजनेस, आपकी तिजारत बहुत अच्छी जा रही है, हाजा मिन फजल रब्बी, ये नहीं है कि आप बहुत जहीन हैं, तो इस वजह से है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि पैगंबर के किरदार में अमल के उसूल क्या निकलते हैं, और साथ ही वो ये बात भी कहते हैं कि ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ या फिर मैं जो हूँ वो कुफराने नियमत करने वालों में शामिल हो जाता हूँ। और अगर कोई शुक्र करता है तो उसका अपना ही फायदा है, और अगर कोई शुक्र नहीं करता तो उसका अपना ही नुकसान है। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि जो नेक बनते हैं, जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, जो अल्लाह की अतात करते हैं, तो दरअसल वो अपना ही फायदा करते हैं, और जो अतात नहीं करते तो अपना ही नुकसान करते हैं। तो ये जो तख्त था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्यों मंगवाया था, ताकि वो मलका को और उसके दरबारियों को जब वो आएंगे तो उन्हें दिखाए कि कैसे ये अल्लाह का रसूल है, कि उसके पास ये मौजा भी हुआ कि जो उनका तख्त था वो यहाँ पे मौजूद है। काला नकेरू लहा अरशहा ननजुर अतातदी अम तकूनु मिनल्लजीना ला यातदून। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है कहते हैं कि नक के रूलहा के मानी है कि हालत को ऐसा बदल दो कि पहचान ना सके, सूरत बदल दो, और जैसे किसी हालत को तब्दील कर देना कि कुछ फेर बदल कर दो, हुक्म दिया कि नक के रूलहा के इस तख्त को जो है कुछ बदल कर रख दो, नंजुर नंजुर ताकि हम देखें, काला नकेरू लहा अरशाह, कहा कि सूरत बदल दो लहा इस मलका के लिए, अरशाह इसके तख्त की, नंजुर ताकि हम देखें, अता तदी क्या ये हदायत पाती है, यानी इसको पता चल जाता है, हम तकून मिन अल्लजीना ला यातदून, या ये उन लोगों में से हो जाती है जो कि राह नहीं पाते, यानी जब तख्त को कुछ बदल कर इसके सामने रखा जाएगा तो ये समझ लेती है कि इसी का तख्त है, एक मानी तो ये है, दूसरे मानी ये है कि ये इतना बड़ा मोजा देकर कि तख्त इसका है और यहां पर आ गया हुआ है, तो इसको हदायत मिलती है कि नहीं, यानी ये फौरन अल्लाह की तरफ रजू करती है कि नहीं, हम तकूना मिन अल्लजीना ला यातदून फलम्मा जाअत, फिर जब वो आ पहुंची, यानी अब मलका जो है वो आई है और उससे कहा गया, कीला कहा गया, अहा कजा अर्शुक, क्या इसी तरह का है तेरा तख्त, क्या ऐसा ही है तेरा तख्त, भी कालत का अन्नहू हुआ, मलका ने कहा गोया कि वही है, तो हालांकि उसको उसकी शक्ल कुछ तब्दील भी की गई थी लेकिन उसने जो है अपने तख्त को पहचान लिया और उसने कहा ये गोया वही है, यानी बड़ा ही उसने मोहताज जवाब दिया, गोया ये वही है, कन्नहू हुआ, गोया के वही है, यानी इसमें इकरार भी है नफी नहीं है, निहायत मोहताज जवाब है। वह उती नल इल्मा मिन कबलिहा व कुन्ना मुस्लिमीन, और हमें तो दे दिया गया था इल्म। वो कहने लगी कि मुझे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत और शान का पहले ही पता चल गया था, व कुन्ना मुस्लिमीन, और हम तो फरमा बरदार हैं, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है वो तोहफे कबूल नहीं किए थे ना, तो पता चल गया था कि ये दुनियादार बादशाह नहीं है जो को किसी की दौलत और दुनिया से मोहब्बत करता है। तो हम तो पहले ही जान गए थे, हम तो इतराफ कर चुके थे और हम तो फरमा बरदार हैं। वसद्दहा, और रोका उसको, मा कानत ताबुदु मिन दुनिल्लाह, जो थी इबादत करती अल्लाह को छोड़कर। वसद्दहा, अब क्या किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब वो तख्त उसके सामने पेश किया और उसने जो है वो उसको कबूल कर लिया, यानी मान लिया कि ये मेरा ही तख्त है, और उसने इकरार कर दिया कि मैं जो है वो अतात गुजार लोगों में से हूं, तो फिर वो ईमान लाने वालों में शामिल क्यों नहीं हुई थी? उसको ईमान लाने से किस चीज ने रोका था? वसद्दहा, और उसके लिए रुकावट बन गई। वसद्दहा, और उसके लिए रोक थी और रोका था उसको। मा कानत ताबुदु मिन दुनिल्लाह, के वो अल्लाह के सिवा जो थी वो पूजती थी, उसकी वजह क्या थी? इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन, के वो एक काफिर कौम से ताल्लुक रखती थी। तो ये थी उसकी वजह, उसने एक काफिर माहौल में आंख खोली थी, वरना वो कैसी औरत थी कि वो सलीमुल फितरत थी, वो हट धर्म नहीं थी, जिद्दी नहीं थी, बल्कि जो ही उसके सामने जो है वो हक की सदाकत खुलकर सामने आ गई, तो तौहीद की हकीकत उसके सामने खुल गई, तो फौरन उसने उसको कबूल कर लिया। तो वो जो काफिराना माहौल था, तो उसकी वजह से वो दीन से दूर थी। कानत मिन कौमिन काफिरीन, वो एक काफिर कौम से ताल्लुक रखती थी। तो माने क्या है कि जिद्दी नहीं थी, हट धर्म नहीं थी, बस जब से होश संभाली थी तो लोगों को सूरज की पूजा करते देखा तो बस वही पूजा कर रही थी। पीला, फिर उससे कह दिया गया, यहां उससे उदखुल सरह के महल में दाखिल हो जा। सरह स्वाद रहा, ऐसे महल को गया, ऐसी इमारत को कहते हैं जो नक्शो निगार से मुजयन हो और नकायश से पाक हो। ऐसी खूबसूरत इमारत जिसके अंदर बहुत नक्शो निगार हो, बुलंद हो और सजी भी हो। कसर नहीं है, ये सरह है, कसर से भी खूबसूरत चीज को सरह कहते हैं। तो जब वो उसको कहा गया कि महल में दाखिल हो जा, फलम्मा रअतु, फिर उसने जो उसको देखा, हसेबतु लुज्जतन, तो उसने उसको समझा लुज्जतन गहरा पानी। लुज आप पढ़ चुकी है ना, लुज जो है इसके माने क्या है? लाम जीम जीम का जो लफ्ज है इसके माने है किसी ममनू के ममनू काम के करने में बढ़ते चले जाना, उस पर जिद करना और सरकशी दिखाना। लज्जातुल बहर, समंदर की मौजों के तलातब को भी कहते हैं, गहरे पानी में चले जाना। तो उसने क्या समझा कि ये कोई गहरा पानी है या कोई हौज है, तो उसने समझा, हसे बथू, उसने उसको समझा लुज्जतन पानी का हौज, व कशफत, और उसने खोल दी अनसाकेहा, अपनी पिंडलियां, यानी उसने अपने पैंचे उठा लिए, उसने अपनी पिंडलियां खोल दी। सीन वकाफ सूख जो है ये इसके मानी होते हैं पिंडली के, मल्तफत इस्साक बिस्साक, जब पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी। तो सीन वो काफ के मानी होते हैं सूकुल इबल, ऊंट को चिलाना या हांकना। तो मसाक का मतलब होता है फिर चलना, इला रब्बे का यौम जिनिल मसाक, उस दिन इंसान रब की तरफ चलेगा। तो पिंडली को भी कहते हैं, बाजार के लिए भी आता है क्योंकि बाजार की तरफ इंसान भागा चला जाता है ना। माल हाजर रसूल या कुल तामू व यमशी फिल अस्वाक, सूक की जमाया स्वाक बाजार। वो कशफत, और खोल दिए अन से साकेहा, अपनी पिंडलियों से, और उसने अपने पैंचे जो थे वो ऊपर उठा लिए। क्योंकि पानी का हौस समझा तो पांचे ऊपर उठा लिए। कहा इन्नहु सरहुन, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो एक महल है, यानी ये तो आलीशान बुलंदोबाला खूबसूरत मुजयन नक्शो निगार से सजी हुई, ये तो एक महल है, इमारत है। मुमर्रतुन, मुमर्रत जो है ये कहते हैं जो चिकना साफ हमवार हो। मुमर्रत लफ्ज जो है ये कहते हैं जैसे साफ चिकने घड़े हुए पत्थरों को, उस खुश शक्ल बच्चे को भी कहते हैं जिसके चेहरे पर अभी दाढ़ी मूंछ ना आई हो। ना पीछे भी आप पढ़ चुकी हैं, और जिस दरख्त पर पत्ते ना हो उसे भी कहते हैं। तो यहां मुराद क्या है कि महल के अंदर ऐसे पत्थर लगे हुए थे, इस तरह के साफ चिकने पत्थर थे कि बिल्कुल फिर वाजे क्लियर। तो ये चिकना फर्श है, इन्नहु सरहुन, ये एक महल है, ये फर्श है, मुमर्रदुन चिकना साफ सुथरा, ये बिल्कुल ही जैसे पत्थरों से जड़ा हुआ महल है लेकिन साफ चिकना पत्थरों से। मिन कवारीर, कवारीर जो है ये शीशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कवारीर शीशा, और शीशे की कई किस्में आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, तो यहाँ पे भी जो है वो खास तौर पे शीशे का जिक्र किया जा रहा है कि ये आम नहीं है बल्कि शीशे से बना हुआ जो है ये फर्श है, चिकना फर्श। मतलब क्या था कि शीशे से नीचे जो पानी नजर आ रहा था, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो महल था बड़ा ही खूबसूरत, तो उसको देखकर जो है मलका सबा ये समझी कि ये यहाँ पर जो है वो पानी है, तो इसलिए उन्होंने अपने पैंचे जो है वो ऊपर उठा लिए। मुफस्सरीन कहते हैं कि उनके पास एक ऐसा महल था जिसका फर्श चिकने शीशे का बना था, उसके नीचे एक बड़ा तालाब था जिसमें बहुत सी मछलियां थी और पानी में वो तैरती रहती थी। तो मलका जो है वो ये समझी कि शायद यहाँ पर जो है ये पानी है, तो इसलिए उसने पिंडलियों से कपड़े ऊपर किए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये पानी नहीं है बल्कि चिकने शीशे का फर्श है। कवारीर का रूट है काफ रारा। कालत, वो बोली रब्बे इन्नी जलम तू नफसी, मैं आज तक अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म करती रही, वह असलम तू मा सुलेमाना लिल्लाह रब्बिल आलमीन, और अब मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की अतात कबूल कर ली। तो इसके साथ ही फिर मलकाए सबा जो है ये मुसलमान हो गई। अब कुरान और सही हदीस में इसकी कोई तफसील नहीं पता चलती कि इसके बाद फिर क्या हुआ। इसके बाद कुरान भी खामोश है और हदीस भी खामोश है, और फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें भी खामोश हो जाना चाहिए, और इधर उधर के वाकयात और किस्से और कहानियां जो है फिर उसको खामखा हमें नहीं बयान करना चाहिए। तो असल चीज जो है वो ये है कि मलका सबा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाके से अल्लाह ताला क्या पे हमें पैगाम देना चाहते हैं। अब आप देखें कि एक तरफ आप जो है आपने फिरौन और उसकी कौम के लोगों का और बदकारियों का हाल आपने देखा, दूसरी तरफ जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का हाल के दौलत हुकूमत शौकत शानो शौकत सबके बावजूद उनके अंदर किबर नहीं था और वो आजिज और मुती बंदे थे, तीसरी तरफ मलका सबा अरब की मशहूर दौलतमंद हुक्मरान थी और तिजारत और जरात के लिहाज से ये कौम जो थी ये अपने उरूज पर थी, तिजारत और जरात के एतबार से, कि ऐसे अल्लाह ताला ने इनको फलों से नवाजा था कि अगर कोई खाली टोकरी को लेकर गुजरता था ना बाग में से, सर पर टोकरी रखकर जाता था, तो वो फलों से लद जाती थी, भर जाती थी, यानी बगैर तोड़े ही फल उसके अंदर आ जाते थे। और जैसे शीशे के अंदर आप देखते हैं ना, तो आपको नजर आता है कि एक और चीज है जैसी, यानी आप देख रहे हैं तो आपको अपना वजूद शीशे में नजर आता है, तो ऐसे लगता था कि दाएं बाएं लोग देते थे तो जैसे हर तरफ बाघ ही बाघ उनको जो है वो नजर आते थे। तो इंतहाई खुशहाल कौम थी जरात और तिजारत की वजह से। बड़ा सा इन्होंने एक बंद भी तामीर किया हुआ था सद्दे मारब के नाम से, नहरों का बेहतरीन इंतजाम किया था, जिसकी वजह से इनका इलाका बड़ा ही सरसब्ज और शादाब था। खूब इन्होंने तरक्की की हुई थी यमन में। लेकिन जो है कौन लोग थे, ये मुशरिक लोग थे, और सरदाराने कुरैश की निस्बत इनके पास बड़ी दौलत थी। और फिर आप देखें कि बुत परस्त कौम थी, अबाओ अजदाद की अंधी तकलीद करने वाली, बल्कि सबा भी ऐसा कर सकती थी ना, इनकार करती, क्योंकि वो तो जैसे जद्दी पुश्ती जो थी वो मुशरिका थी, सूरज की पूजा करने वाली। लेकिन मुशरिक माहौल में आंखें खोलने के बावजूद ये कैसी थी, ये जिद्दी नहीं थी। जब इसके सामने हक आ गया, हक खुल गया, तो फौरन इसने हक को कबूल किया और ख्वाहिशाते नफ्स की जो गुलामी थी उसको इसने छोड़ दिया। तो ये है असल पैगाम जो कि हमारे लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयात में हमें ये पैगाम जो है वो दिया है कि हमें जो है वो जिम्मेदार बनना है, दुनिया की बजाय, दुनिया की जिंदगी पर जो है वो लट्टू होने की बजाय, या उसको अपनी जिंदगी का मकसद बनाने की बजाय अल्लाह के आगे रुजू करना है, और अपने नफ्स की ख्वाहिशात जो हैं उन पर जो है वो इखलाकी पाबंदियां बर्दाश्त करनी है। तो ये तीन किस्म की सीरतें हैं, एक तरफ फिरौन, दूसरी तरफ सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम का नमूना, और तीसरी तरफ मलका सबा। और ये तीन किस्म की सीरतों के नमूने पेश करके हमारे सामने जो बात रखी गई वो क्या है कि हमें कुरान के जरिए से हदायत हासिल करनी है, हमें एक जिम्मेदार बंदा बनना है, हमें अपने नफ्स की जो पूजा और बंदगी है इससे निकलना है, क्योंकि अल्लाह को शिर्क करना जो है ये सख्त नापसंद है। और अहले मक्का क्या कर रहे थे, वो शिर्क कर रहे थे। तो अहले मक्का के पास भी जो सरदारियां और बागीचे थे वो कौन किसके दिए हुए थे, अल्लाह के अता करदा थे, और मलका सबा के पास भी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी, और दाऊद अलैहिस्सलाम के पास भी। तो फिर करना क्या चाहिए कि सब तवाजों के साथ अपने आप को अल्लाह के आगे हम झुका दें। देखिए इंसान क्या करता है, जाहिर को देखकर फरेब खा जाता है। जैसे मलका सबा जो है, जब वो उसने देखा कि फर्श है साफ शफाफ और नीचे पानी बह रहा था, शीशा लगा हुआ था ऊपर, वो समझी कि शायद आगे पानी का हौज है, तो धोखा खा गई ना वो, फौरन गैर इरादी तौर पर उसने अपने पैंचे ऊपर किए। तो इंसान क्या करता है, जाहिर को देखकर फरेब खा जाता है, हकीकत उससे मुख्तलिफ होती है। जाहिर को देखता है सूरज चांद, उसकी पूजा करने लगता है, कभी दौलत की पूजा करता है, कभी हुसन की, कभी हुकूमत की, कभी डिग्री की, भूल जाता है कि इसके आगे एक हकीकत है, वो है हकीकी खुदा, इसके आगे एक जिंदगी है, वो है आखिरत की जिंदगी। और क्या करना चाहिए, फिर उसकी तैयारी करनी चाहिए कि रब्बे औज़ेनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया वन आमला सालिहन तरदाहू व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिक सालिहीन सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।